नमो भगवते वासुदेवाय। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। नारायणं नमस्कृत्यं नरं चैव नरोत्तमं देवीं सरस्वतीं व्यासं ततो जयेत् मुदीरेत् नष्टप्रायेषु अभद्रेषु नित्यं भागवत सेवया। भागवते उत्तम श्लोके भक्तिर्भवति नैष्टिकी। हरे कृष्णा। भागवतम स्कंद 5 अध्याय 20 श्लोक नंबर 5। प्रत्नस्य विष्णु रूपम जत सत्यस्य तस्य ब्राह्मणः अमृतस्य च अमृतश्च सूर्यम् आत्मनम् मी महित। शब्दानुवाद। प्रत्नस्य प्राचीनतम पुरुष का, विष्णु भगवान विष्णु का, रूपम रूप जात जो, सत्यस्य परम सत्य का, ऋतस्य धर्म का, ब्रह्मणः परम ब्रह्म का, अमृतस्य शुभ फल का, च तथा मृत्योः मृत्यु अशुभ फल, च तथा सूर्यम सूर्य देवता, आत्मनम सभी आत्मा के मूल परमात्मा की, इमही शरण की याचना करते हैं। इति इस प्रकार। शब्दानुवाद अनुवाद और भावार्थ अवैचरण भक्तिवेदांत स्वामी शिला प्रभुपाद के द्वारा। शिला प्रभुपाद की अनुवाद इस प्रकार की है। इस मंत्र के द्वारा प्लख दीप के वासी परम ब्रह्म की उपासना करते हैं। हम सूर्य देवता की शरण ग्रहण करें जो परम प्रकाशित पुराण पुरुष श्री भगवान के प्रतिबिंब है। विष्णु ही एकमात्र आराध्य है, वही वेद है, वही धर्म है और वही शुभाशुभ फलों के स्रोत है। तात्पर्य, भगवान विष्णु मृत्यु के भी परमेश्वर है। जैसा कि भगवद गीता में पुष्टि की गई है, मृत्यु सर्वहरश्चाहम्। शुभ तथा अशुभ इन दोनों प्रकार के कार्यों के नियंता भगवान विष्णु है। ऐसा माना जाता है कि शुभ कार्य विष्णु के सम्मुख होते हैं और अशुभ कार्य उनकी पीठ के पीछे होता है। शुभ तथा अशुभ कार्य सारे विश्व में एक साथ पाए जाते हैं और भगवान विष्णु इन दोनों के नियंता है। इस श्लोक के संबंध में श्री माध्वाचार्य का कथन है। सूर्य सोमाग्नि बारिशी विधा तुषु यथाक्रमम प्लख्यादि दीप संस्थासु स्थित हरिम उपासते। संपूर्ण सृष्टि में अनेक भूभाग खेत पहाड़ तथा सागर पाए जाते हैं और सर्वत्र ही भगवान विभिन्न नामों से पूजे जाते हैं। शिल वीरराघव आचार्य ने श्रीमद् भागवत के इस श्लोक की व्याख्या इस प्रकार की है। विराट जगत के मूल कारण अवश्य ही पुरातन पुरुष है और वे भौतिक रूपांतर से परे होने चाहिए। वे ही समस्त शुभ कार्यों के भोक्ता है और इस बद्ध जीवन तथा मुक्ति के कारण भी वे ही है। सूर्य देव की गणना परम शक्तिशाली जीव अथवा जीवात्मा के रूप में की गई है जो उनके शरीर के एक अंग का प्रतिनिधित्व करते हैं। हम स्वभावतः शक्तिशाली जीवों के वश में है, अतः हम विभिन्न देवताओं की उपासना ऐसे जीवों के रूप में कर सकते हैं जो भगवान के शक्तिशाली प्रतिनिधि है। यद्यपि इस मंत्र में सूर्य देवता की उपासना के लिए कहा गया है, किंतु उनकी उपासना भगवान के रूप में नहीं वरन उनके शक्तिशाली प्रतिनिधि के रूप में की जाती है। कठोपनिषद में पहला इसको क्या बोला जाएगा, पहला स्कंद तो नहीं बोला सकते हैं, इसको क्या कुछ बोलते हैं, 1.3.1 में कहा गया है, हृतम पिबतौ सुकृतस्य लोके गुह्यं प्रविष्टौ परमे परार्धे छाया तपहु ब्रह्मा विदो वदन्ति पञ्चाग्नयो येत ये च त्रिणा चकितः। हे नचिकेता, सूक्ष्म जीवात्मा तथा परमात्मा के रूप में विष्णु के ये दोनों अंश इस शरीर की हृदय गुहा में स्थित है। इस गुहा में प्रवेश करके जीवात्मा प्राणवायु पर आधारित रहकर कर्म के फल का भोग करता है और परमात्मा साक्षी बनकर उसे भोग करने देता है। ब्रह्मज्ञानियों तथा वैदिक नियमों का पालन करने वाले गृहस्थ का कहना है कि इन दोनों में ऐसा ही अंतर है जैसा कि सूर्य तथा उसकी छाया में। शेताशत उपनिषद में 6:26-16 श्लोक में कहा गया है, स विश्वकृत विश्व वेदात जोनि ज्ञा कालाकारो गुणी सर्ववेद विद यह प्रधान क्षेत्र ज्ञापति गुणेश संसार मुख्य स्थितिबंध हेतु। इस जगत का सृष्टिकर्ता परमात्मा अपनी सृष्टि का कोना कोना पहचानता है, यद्यपि वह इसका कारण है किंतु उसके प्रकट होने की कोई आवश्यकता नहीं है। वह सर्वज्ञानता है, वह परमात्मा समस्त दिव्य गुण का स्वामी तथा इस जगत के बंधन और मुख्य का भी स्वामी है। इस प्रकार तैत्तरीय उपनिषद में 2:8 में कहा गया है, भिषास्मा द्वात पर्वते भिषो देति सूर्यः भिषास्माद अग्नि चंद्रेश्च मृत्यु धर्मपति पंचमः। परम ब्रह्म के भय से वायु बहती है, सूर्य उदय अस्त होता है और अग्नि प्रज्वलित होती है, उसी के भय से मृत्यु तथा स्वर्ग के राजा इंद्र अपना अपना कार्य करते हैं। जैसा कि इस अध्याय में वर्णित के पक्ष दीप इत्यादि 5 दीपों के वासी क्रमशः सूर्य चंद्र अग्नि वायु तथा ब्रह्म की उपासना इत्यादि करते हैं, यद्यपि वे इन 5 देवताओं का उपासना करते हैं किंतु वास्तव में वे समस्त जीवों का परमात्मा भगवान विष्णु को ही उपासते हैं। जैसा कि इस श्लोक में इन शब्दों से प्रकट है, प्रत्नस्य विष्णु रूपम, विष्णु ब्रह्म है, अमृत है और मृत है, वे परम ब्रह्म है और शुभ तथा अशुभ सभी वस्तुओं के मूल है, ये सबों के हृदय में स्थित है जिनमें देवता भी सम्मिलित है। जैसा कि भगवद गीता 7:20 में वर्णन किया गया है, कामैश्चैस्तरे हृतज्ञाना प्रपद्यन्ते अन्य देवता। कामनाओं ने जिनके ज्ञान को हर लिया है, कामनाओं ने जिनके ज्ञान को हर लिया है वे ही अन्य देवताओं की शरण ग्रहण करते हैं। जो मुख्य का कांक्षाओं के कारण अंधे होते हैं उन्हें अपनी आकांक्षाओं की पूर्ति के लिए देवताओं की उपासना ही सलाह दी जाती है, किंतु देवता उनकी मनोकामनाओं को वास्तव में पूरा नहीं कर पाते हैं। सभी देवता उतना की कर पाते हैं जितने ही भगवान विष्णु उन्हें आज्ञा देते हैं। जो अत्यधिक लालची होते हैं वे विष्णु को न पूछकर अनेक देवताओं की पूजा करते हैं, किंतु वास्तव में वे भगवान विष्णु की ही उपासना करते हैं क्योंकि वे ही समस्त देवताओं के परमात्मा है। ओम अज्ञान तिमिरांधस्य ज्ञानांजन शलाकया चक्षुरुन्मीलितं येन तस्मै श्री गुरवे नमः। श्री चैतन्य मनोभीष्टं स्थापितं येन भूतले स्वयं नृप कदा मह्यं ददाति स्वपदान्तिकं। वंदे अहम श्री गुरु सीतपदकमलं श्री गुरोन वैष्णवांश श्री रूपं सकृदतं सगण रघुनाथानीतं तं सजीवं साद्वैतम सवदुतम परिजन सहितम कृष्ण चैतन्य देवम श्री राधा कृष्ण पदन सहगना ललिता श्री विशाखा नितांश हे कृष्ण करुणा सिंधु दीनबंधु जगतपते गोपेश गोपिका कांत राधा कांत नमस्तुते तप्त कांचन गौरांगी राधे वृंदावनेश्वरी वृषभानुसुते देवी प्रणमामि हरि प्रिये वांछाकल्पतरुभ्यश्च कृपा सिंधुभ्यैव च पतितान पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो नमो नमः। जय श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर शिवासादि गौर भक्त वृंद हरे कृष्णा 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 हरे 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 राम 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 हरे 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 कृष्णा। प्रातः सुबह भागवत कक्ष में आप सभी को कृष्ण मूलानंद का मंदिर का ओर से हम हार्दिक स्वागत करते हैं। पुनः भागवत का पर चर्चा करने के लिए ये जो चल रहा है शीर्षक ब्रह्मांड रचना की विश्लेषण, तब आज जो श्लोक है ये अध्याय संपूर्ण जम्बू द्वीप का बारे में वर्णन चल रहा है, इसका बीच में आएगा। ये जो आज का श्लोक है यह प्लक्षद्वीप का, ये प्लक्षद्वीप जो है जम्बूद्वीप का चार तरफ तो लवण सागर घिरा हुआ है। जम्बूद्वीप का चार तरफ लवण सागर जो हम लोग बीच में है, ऐसा समझिए हमें बीच में है तो लवण सागर को पानी को अभी स्पर्श करते हैं, जहां भी जाते हैं सागर है। और इसका पीछे आता है लवण सागर का बाद प्लक्षद्वीप आता है, और प्लक्षद्वीप को चार तरफ इखुरस गन्ने का जूस कभी कभी पीना पड़ता है, पेट गर्म जब होता है गन्ने का जूस तब जिनको जन्म लेना है वहां पे जा सकते हैं, ज्यादा गन्ने जूस मिलेगा। तब आज का जो श्लोक है ये श्लोक में प्रत्नस्य आता है, पहला आता है प्रत्नस्य जो प्राचीन पुराण कहते हैं प्राचीनतम पुरुष है उनका बारे में दो बार बता गया। प्राचीन पुरुष कौन है, प्राचीन पुरुष कहा जाए तो विष्णु, ये प्रत्नस्य का बाद फिर विष्णु आया। कभी कभी कोई भी चीज को एक बार दो बार तीन बार बोलने से थोड़ा ज्यादा इसका महत्व बढ़ जाता है, इसलिए इसको समझाने के लिए दो बार आ गया, दो शब्द से प्रत्नस्य से हो गया प्राचीनतम पुरुष और इसका बाद है विष्णु। और ये जगत जो है ये संपूर्ण जगत विष्णुमय जगत है, कहते हैं वास्तव में संपूर्ण जगत ही जगन्नाथमय जगत है। कहते हैं हमें विष्णु को पूजा नहीं करके जो लोग देवता पूजा करते हैं, इसलिए जो प्लक्षद्वीप का वासी लोग है वो लोग क्या करते हैं सूर्य देव का उपासना करते हैं। लेकिन हम भक्त लोग को जब मालूम पड़ जाता है देवता को पूजा को छोड़ के विष्णु का शरण में चला जाते हैं, इसका बारे में चर्चा करेंगे। क्योंकि देवता लोग जब विधि पूर्वक सेवा पूजा नहीं होता है, अविधि हो गया थोड़ा बहुत बाई चांस रोक गया, कभी आपका तबीयत खराब हो गया, कुछ पूजा विधि में नहीं कर पाया, वो कभी ना कभी घुसा हो जाते हैं। लेकिन भगवान विष्णु घुसा नहीं होते, भगवान नारायण घुसा नहीं होते, भगवान कृष्ण घुसा नहीं होते। अब प्रमाण तो आगे बहुत सारा है, और देवता लोग के अंदर घमंड भी हो जाता है, कोई भी कारण के लिए भगवान उनका बैकअप देते हैं, भगवान सभी में माध्यम बनते हैं, लेकिन देवता लोग अहंकार से विमूढ़ हो जाते हैं और मूर्खतापूर्ण कर्म करके बैठते भी है। आप लोग सारा लीला सुन चुके हैं जिस प्रकार ब्रजवासी लोग इंद्र को पूजा कर रहे थे, इल्ला तो सुने हैं आगे बताएंगे। पहले जानिए विष्णुमय जगत, ये जो शब्द आया विष्णु, जले विष्णु स्थले विष्णु विष्णु पर्वत मस्तके ज्वाला माला कुले विष्णु सर्वम विष्णुमय जगत। भगवान विष्णु ही जल है, और ये जो जल क्यों कहा गया, जो हमें स्वाद ले रहे ना, ये स्वाद कहां से आता है, ये भगवान से ही आता है। जल में स्वाद नहीं रहेगा और ये स्वाद है, इसलिए आप भगवान कृष्ण को कि विष्णु का आप चिंतन कर रहे हैं। अभी थोड़ा सा ये खारा पानी को हमारे जुहा में लगता है, हमें इमीडिएटली क्या है ये खारा पानी है, ये नमकीन पानी है, जो स्वाद है। तब जले विष्णु, और फिर विष्णु ही जल, भगवान विष्णु ही जल है, पृथ्वी है और पर्वत शिखर एवं अग्नि में विद्यमान है। एवं वस्तु सर्वत्र ब्रह्मांड में केवल भगवान विष्णु ही है, संपूर्ण विश्व विष्णुमय जगत है। विष्णु शब्द का अर्थ क्या है? विशति प्रविशति इति, अर्थात वे सर्वत्र प्रवेश करके निवास कर रहे हैं। जल में है, स्थल में है, अनल में है, पर्वत में भी है और नदी में है, सागर में भी है, और सर्वत्र ही विष्णु की सत्ता विद्यमान है। इसलिए तो प्रहलाद महाराज को विष्णु दिखाई दे रहे थे। प्रहलाद महाराज को दिव्य चक्षु देना नहीं पड़ा, क्यों? कि ऑलरेडी उनको दिव्य चक्षु मिल चुका था। अर्जुन को दिव्य चक्षु देना पड़ा विराट रूप को दर्शन करने के लिए, लेकिन प्रहलाद महाराज को दिव्य चक्षु देना नहीं पड़ा। क्यों? क्योंकि वो ऑलरेडी गर्भ का अंदर में रह के जब कथा सुन रहे थे नारद जी से, नारद जी का कृपा पात्र हो गए। और इसी प्रकार गुरु का जो वचन सुने गर्भ का अंदर में, तत्क्षणात इनका दिव्य चक्षु प्रकटित हो चुका है। इसलिए प्रहलाद महाराज प्रति समय, प्रति क्षण, प्रति मुहूर्त में भगवान को दर्शन कर रहे थे। उनको दिव्य चक्षु देना नहीं पड़ा। इसलिए कहते हैं ना, दिव्य ज्ञान हृदय प्रकाशित, और ये ज्ञान उनका अंदर प्रकट हो चुका है। हम ये जड़ चक्षु से कुछ भी नहीं देख सकते हैं, जड़ चक्षु से नहीं, कर्ण चक्षु से भगवान को देखा जाता है। भगवान को देखना है कर्ण चक्षु से, ये जड़ चक्षु से नहीं। कर्ण चक्षु से मतलब क्या है? भगवान का बारे में सुन के जान सकते हैं। श्रवण बहुत महत्वपूर्ण होता है, इसलिए भगवान का स्वरूप, भगवान का लीला, भगवान का कहानी, ये सब। और ये श्लोक में जो प्रख्यादीपी वासी सूर्यदेव का शरण जाते हैं, वो सोचते हैं कि सूर्यदेव ही हमारा के लिए सब कुछ है। जिस प्रकार ब्रजवासी लोग इंद्र को मानते थे, वो सोचते हैं इंद्रदेव ही सब कुछ है, उसी प्रकार प्रख्यादीपवासी लोग को सूर्य का शरण पे जाते हैं, वो सोचते हैं सब कुछ है। लेकिन इस सूर्यदेव है कौन? सूर्य देवते भगवान का एक चक्षु है, और चंद्र भी दूसरा चक्षु है। भगवान जो दो चक्षु है, दो चक्षु से एक ही चक्षु सूर्य और एक ही चक्षु है चंद्र। ब्रह्म संहिता में कहते हैं, जचक्षुरेश सविता सकल ग्रहाणाम राजा समस्त असुर मूर्ति शेष तेज जस्य गया भ्रमति संवृत काल चक्रो गोविंदम आदि पुरुष स्तमः भजामि। तेज से पूर्ण सूर्य इस जगत के नेत्र है। ये ब्रह्म संहिता में ब्रह्मा जी प्रार्थना करके बोल दिए। क्या बोले? सूर्य इस जगत के नेत्र है, और वे समस्त ग्रह के अधिपति है, अनंत तेज से पूर्ण समस्त देवताओं के प्रतीक है। उन आदि पुरुष गोविंद में भजन करता हूं जिनकी आज्ञा से सूर्य काल चक्र पर चढ़कर भ्रमण करता रहता है। इसलिए कहते हैं जो हमारा काल चक्र है ना, ये सूर्य और चंद्र का देख के हमारा ग्रह नक्षत्र, हमारा जो क्या बोलते हैं इसको, ये बनता है कुंडली। ये जो कुंडली बनता है, ये हमारा सूर्य का चक्र से, सूर्य का जो हमें कितना बजे जन्म लिया, ये टाइम देखा जाता है पूरा टाइम का अनुसार। ये काल चक्र हमारा जो ग्रह को नष्ट करता है, और ये काल चक्र का माध्यम से, और सूर्य का समय देखा जाता है, और ये समय बहुत महत्वपूर्ण होता है जिस टाइम में हमें जन्म लेते हैं। अभी इसीलिए परेशानी आता है अभी टाइम पर, क्योंकि पहले समय पे जन्म कैसा होता था, नॉर्मल डिलीवरी होता था। अभी डॉक्टर को जब, क्योंकि माताओं को थोड़ी से कष्ट आने मात्र से हमें हॉस्पिटल में जाके इमीडिएट डॉक्टर अपना टाइम पे क्या करता है, बच्चे को निकालता है। बच्चे को निकलने के टाइम पे उसका कभी भी परफेक्ट टाइम नहीं मिला, तब कोई भी ज्योतिष कुंडली बनाने में परफेक्ट नहीं बना सकता है। पहले समय पे कुंडली को देखने मात्र से, ज्योतिष ऐसा होते थे, कुंडली देखने मात्र से वो व्यक्ति अपना जीवन में भविष्य में क्या करेगा सब कुछ बता देता था। आप देखिए खुद नॉर्मल, जब प्रभुपाद जी का ज्योतिष देखा गया था, प्रभुपाद का कुंडली जब देखा गया था, ज्योतिष आकर देखा प्रभुपाद का बारे में, उनका पिताजी को सब कुछ बता दिया, कितना साल पे घर छोड़ेगा और सारा विश्व के लिए क्या करेगा। जो पिताजी तो पिताजी का नाम क्या था, प्रभुपाद जी का पिताजी का नाम क्या था, गौर मोहन दे, तो सुन के वो तो आनंदित हो रहे, लेकिन प्रभुपाद जी का मां ने रो रहा है क्योंकि घर छोड़कर चला जाएगा, रो रहा है क्योंकि बच्चे का प्रति कोमल हृदय होता है मां का ना, ये रो रहा है। सारा कुछ प्रभुपाद के बारे में बताया, और ज्योतिष भी इसी प्रकार के होते थे। अभी तो सिर्फ पैसा लेने वाले ज्योतिष होते हैं, पैसा लेके काम करना है, कुछ भी बता देते हैं। ग्रह नक्षत्र को देखते हुए और पूरा डिटेल से बताते थे। और ये जो सूर्य काल चक्र पर चढ़ कर भ्रमण करता है, इसलिए कहते हैं सूर्य का जो उदय होता है, उदय होने का पहले व्यक्ति को जगना चाहिए इमीडिएटली। सूर्य जब उगता है तो वो इमीडिएटली क्या होता है, जो भूत प्रेत होते हैं वो अपना अपना गंतव्य स्थान में चला जाते हैं, चोर भी अपना गंतव्य स्थान चला जाता है। चोरी करता था अंधेरा में, चोरी करता है कोई लाइट दिन में चोरी नहीं करता है। इसलिए सूर्य उदय होने का बाद, और सूर्य उदय होने का पहले क्यों जगना है, क्योंकि उसी टाइम पे दुश्चिंता आता है। बाई चांस आप सोकर रहोगे तब दुश्चिंता आएगा, दुश्चिंता मतलब दुःस्वप्न, बहुत खतरा स्वप्न उसी टाइम पे देखा जाता है। रात में गाढ़ निद्रा में आप दुःस्वप्न नहीं देखोगे। सूर्य उगने का पहले नहीं जागता है व्यक्ति, सोता है तब उसी टाइम पे दुःस्वप्न देखता है, चिल्लाता है, कभी दुःस्वप्न ऐसा देख लेता है और चिल्लाता भी है। तो फिर कहते हैं वैदिक धर्म के कुछ प्रवर्तक सूर्य को ब्रह्म के रूप में पूजते हैं। सूर्य पंच देव में एक है, जो सूर्य देव को पूजा करते हैं लोग, ये पंच देव में एक देव होते हैं सूर्य देव। पंच देव क्या क्या है किसको मालूम है, हमें भारतीय तो नहीं है जैसा लग रहा है। भारत में होते हैं पंच देव, पहले हम लोग को वही देव को पूजा करते थे। कौन पहले विष्णु को पूजा था, पहले कौन कृष्ण को पूजा करता था, कौन जगन्नाथ को पूजा करता था, पहले सब यही देवता का शरण में थे। भारत में कोना कोना में चला जाइए, हर जगह पे हर घर पे कोई ना कोई देवता का पूजा आराधना होता है। और ये पांच देव होते हैं, पहले है गणेश, गृह प्रवेश का होने का पहले घर का सामने गणपति को पहले पूजा करते हैं, गणेश से होता है। दूसरा होते हैं विष्णु, तीसरा होते हैं शिव जी, चौथा होता है दुर्गा, और पांच है सूर्य। जो पांच भूत होते हैं, पांच भूत ये पांच तत्व से आता है, इसीलिए पांच देवता को लोग पूजा करते थे। गणेश होते हैं जल तत्व, विष्णु होते हैं वायु तत्व, शिवजी होते हैं पृथ्वी तत्व, और दुर्गा होते हैं अग्नि तत्व, और सूर्य होता है आकाश तत्व। इसलिए पांच देवता को लोग पूजा करते हैं। लेकिन हमारा शास्त्रगत प्रमाण के अनुसार हमें देवता का शरण पे नहीं जाना चाहिए, नहीं जाना चाहिए, क्योंकि देवता उन्हीं का अंश है। और प्रभुपाद भी यहां मेंशन किए, उनका डर से, भगवान का भय से वायु बहती है और सूर्य भी उदय और अस्त होता है, और अग्नि प्रज्वलित होता है उनका भय से, भगवान का भय से। भगवान उनको सेवा दिया, लेकिन सूर्य भगवान नहीं हो सकते, इंद्र भगवान नहीं हो सकते। भगवान कौन है? भगवान का अंदर सर ऐश्वर्य जो है वो पूर्ण है, अधिक मात्रा में पूर्ण है। ईशावास्य इदम सर्वम कहते हैं पूर्णता है। ओ पूर्ण मद पुन्नात पुण्य मद पुण्य पुन मद उच्यते, ये जो श्लोक है इस उपनिषद का संपूर्ण पूर्ण है, सड़ ऐश्वर्य में पूर्ण वो भगवान है। और फिर कहते हैं ये उनका अंश है, जीवात्मा जिस प्रकार भगवान का अंश है और देवता लोक भी भगवान का अंश है, उनका सेवा करने के लिए। जैसा कोई ऑफिस होता है, एग्जाम्पल कोई भी ऑफिस होता है, ऑफिस में एक हेड होता है और हेड होने का मात्र से सभी डिपार्टमेंट दे देता है, सभी का अलग अलग डिपार्टमेंट। हमारा मंदिर का देखिए, अकाउंट सेक्शन है, सफाई करने का अलग सेक्शन है, गोबिना का अलग सेक्शन है, हाँ वृंदावन का टीवी चैनल वाला उनका अलग सेक्शन है, सब अलग अलग है। लेकिन जो हेड है वो कंट्रोल करता है, उनका कंट्रोल में चलता है, वो अपना आप कुछ नहीं कर सकते हैं, कुछ भी नहीं कर सकते। हो सकता है कर भी लेते हैं, घमंड से कर भी लेते हैं, फिर बाद में परेशानी होता है। बताते हैं कि इस प्रकार ये परेशानी हुआ था, मतलब देवता लोग का अंदर कैसा घमंड आ जाता है। पहले स्टोरी आप लोग को जानते हैं, गोवर्धन जब भगवान उठाया, ये स्टोरी सभी को नहीं, इसको बताना पड़ेगा। हाँ जी, दूसरा स्टोरी मैं बताना चाहता हूँ कि टाइम मेरा कम है। हाँ जी बोलोगे तब ना, सभी लोग को मालूम है, ये स्टोरी बताने का जरूरत नहीं पड़ेगा। कृष्ण ने गोवर्धन उठाया ये इंद्र का घमंड को तोड़ने के लिए, ये सिंपल है। हाँ जी, हाँ बात है, इसका नहीं है, मैं दूसरा और एक दूसरा भी आप लोग को सुना होगा, लेकिन फिर भी आपको रिमाइंड करा रहा हूं किस प्रकार देवता लोग घमंड होते हैं। कहते हैं एक बार देवासुर संग्राम में इन्हीं परम ब्रह्म परमात्मा की अपार करुणा और आशीर्वाद से देवताओं ने विजय प्राप्त कर लिया, परंतु उन्हें अभिमान हो गया। जितने सब देवता लोग का अभिमान हुआ, उन्हें सोच रहे, क्या सोचे, विजय हमने अपने पराक्रम के से प्राप्त की है। देवता लोग सोचे हैं हम अपना बल से ही हमें पराक्रम, तो उनका यह मिथ्या अभिमान था, दम था, और अज्ञानता को दूर करने के लिए एवं सभी को विनम्रता का शिक्षा देने के लिए सभी कारणों के कारण भूत परम ब्रह्म एक अद्भुत रूप लिए, भगवान और एक अद्भुत रूप लिया जो कि जक्ष बनकर आए उनका सामने। जक्ष के रूप में उन्हें प्रकट हुए, देवगण इस अद्भुत रूप को देखकर कुछ समझ नहीं सके, ये जक्ष है कौन, देवता लोग कोई नहीं समझ पाए। विस्मयभूत होकर सर्वप्रथम उन्होंने सर्वज्ञ अग्निदेव को उनके बारे में जानने के लिए प्रेरित किया, ये जक्ष है कौन। अग्निदेव को भेजा उनका पास, और अग्निदेव जाके जक्ष रूपी भगवान का पास पूछा, आप हो कौन। अग्निदेव प्रणाम ही नहीं किया, सीधा गया और बोला आप हो कौन, ऐसा पूछा। गर्भ से अग्नि प्रत्युत्तर में बोले, नहीं पहले तो भगवान ही पूछा, जक्ष रूपी भगवान पूछे आप हो कौन। तब अग्निदेव बोलने लगे, आप मुझे नहीं जानते, मैं संपूर्ण विश्व में अग्नि के नाम से प्रसिद्ध हूं, मैं जात वेद हूं। जक्ष रूपी ब्रह्म ने पुनः प्रश्न किया, तुम प्रसिद्ध और गुण संपन्न हो, लेकिन तुम्हारे अंदर कौन सा शक्ति है। तब अग्निदेव कहने लगा, मेरा अंदर इतने शक्ति है जो कि सारा धरती को मैं भस्मीभूत कर सकता हूं, जला के भस्मीभूत कर सकता हूं। जक्ष रूपी भगवान ने एक ही सूखा सूखा मतलब क्या बोलते हैं, ड्राई वाला घास, ड्राई घास क्या हिंदी में क्या बोला जाएगा, एक तिंखा, लेकिन सूखा है मतलब पूरा मतलब कच्चा नहीं है, हाँ ड्राई है, हाँ। और उसको उठाए, ये तिंखा को आप जला सकते हैं? अग्निदेव हंसने लगा, अग्निदेव हंसने लगा, बोला ये तिंखा क्या आप मेरा कुछ सोचते हो, मैं सारा धरती को जला के भस्मीभूत कर सकता हूं, आप ये तिंखा दिखा रहे हो मेरा को, ऐसा होते हैं ना घमंड से, दिखाइए आपका पराक्रम का शक्ति, ऐसा ही भगवान दिखा रहे हैं, बोला जलाइए। तो अग्निदेव बहुत कोशिश किया, इसको 24 घंटा का जगह पे 48 घंटा भी लग गया कोशिश करते करते, फिर भी नहीं जला पाए, नतमस्तक होके पीछे का तरफ मुड़ते हुए निकल गया, कुछ बोला नहीं। फिर अग्निदेव जाके अलग सब देवता लोग का सामने क्या बोले, तब वहां से वापस चला गया। फिर इसका बाद पवन देव आए, पवन देवता आए, और वो भी जब जख्य रूपी भगवान के सामने खड़े होके, तब भगवान पूछने लगे आप कौन हो, आप मेरा को नहीं जानते, मैं वायु देव हूं ना, आपका काम क्या है, क्या कर सकते हैं ना, मेरा पराक्रम शक्ति इतना है सारा जगत को मैं उल्टा पलटा करा सकता हूं, उड़ा के कहां उठा के फेंक सकता हूं, जैसा तूणा व्रत आया था कृष्ण को लेने के लिए उड़ा के इसका अंदर इतना घमंड, असुर का अंदर जितना घमंड है देवता लोग का अंदर उससे और डबल हो जाता है। और वो यहां पे तो वो जो वायुदेव आके वो भी फेल मर गया, भगवान दिखाया वो तिंखा को आप उड़ा के दिखाइए कितना दूर तक आप फेंकोगे देखते हैं। तभी वो भी उसका पराक्रम का शक्ति दिखाया लेकिन उड़ा नहीं पाया। अंत में देवताओं ने देवराज इंद्र से उस पक्ष रूपी उस जख्य रूपी ब्रह्म का परिचय प्राप्त करने का अनुरोध किया। जैसे ही देवराज इंद्र उनके समीप पहुंचे तत्क्षण ब्रह्म अदृश्य हो गया, जख्य रूपी ब्रह्म अदृश्य हो गए, एवं अंत में इंद्र की दृढ़ भक्ति और जिज्ञासा का को जानकर वे हिमालय पुत्री सुशोभना स्वर्ण भरण भूषिता हेमवती मतलब भगवती और ब्रह्म विद्या स्वरूपिणी उम्मा के रूप में प्रकट हुए। उन्हें इंद्र ने पूछा मां ये अद्भुत जख्य कौन है, मां भगवती उमा ने कहा वे परम ब्रह्म परमेश्वर है जिनकी कृपा से कृपा और शक्ति के बल से ही दानव पराजित हुए थे, आप सब केवल निमित्त मात्र हो, आपका ये अभिमान अहंकार मिटाने के लिए भगवान जख्य रूप का रूप में प्रकट हुए थे। स्मरण रखो कि पराक्रमी का पराक्रम, बलवान का बल, विद्वान की विद्या, तपस्वी का तेज सब किछु उन्हीं से ही आता है। उनसे ही आता है ले वो आ जाने का बाद आपका अंदर घमंड आ गया, ये घमंड को तोड़ने के लिए भगवान जख्य रूप बनकर आए, आपका जो इतना सब घमंड है कैसा घटेगा, ये कारण था। और शास्त्र में वर्णन आता है भगवान एक ही है, देवता अनेक है, जब भगवान का शरण में व्यक्ति जाता है देवता ऑटोमेटिक ही प्रसन्न होते हैं, और देवता को कोई भी व्यक्ति कुछ भी चढ़ाता है देवता डायरेक्ट ग्रहण नहीं करते, वो अपना प्रभु को देते हैं। एग्जाम्पल कभी कभी लोग माला जपते हैं तो भगवान कृष्ण का नाम नहीं जप के ओम नमः शिवाय जप करते हैं। बहुत सारा प्रश्न भी इसमें आता है, लोग बोलते हैं हमें नमः शिवाय कर रहा है, छठा अक्षर मंत्र जप करते हैं। तब उनको समझाने के लिए शिवजी तब प्रसन्न होते हैं, शिवजी स्वयं भी रुद्राक्ष माला लेके पेड़ का नीचे बैठे और किसका नाम ले रहा है, किसका नाम ले रहा है, राम का नाम ले रहा है, शंकर भी राम का नाम ले रहा है। और आप वही राम का नाम लोगे, शंकर और प्रसन्न हो जाते हैं, और प्रसन्न हो जाते हैं। आप डायरेक्ट ले सकते, उसमें कोई परेशान नहीं है। हमें देवता का शरण पे जाके, हमें कृष्ण का शरण में डायरेक्ट, राम का शरण में डायरेक्ट जा सकते। और देवता लोग को डायरेक्ट कुछ भी ग्रहण नहीं करते, कोई भी चीज पहले प्रभु को देते, प्रभु का, क्योंकि प्रभु का दास दासी है ना, उनको पहले समर्पित करते हैं। तब इसलिए कहते हैं गीता महात्म्य में श्लोक आता है, एक शास्त्र देव की पुत्र गीतम, एक देव देव की पुत्र एव, एक मंत्र तस्य नामानि जानी कर्माण्य पेक्यम तस्य देवस्य सेवा। भगवान एक ही है, दो नहीं, एक ही ब्रह्म द्वितीय नास्ति। ये गीता महात्म्य की 7 नंबर श्लोक है। इस श्लोक को सभी भक्त लोग को याद रखना चाहिए। जो लोग बोलते हैं ये पूजा करना, ये पूजा करना, वो पूजा करना, उनको बताना एक देव देव की पुत्र एव, ये प्रमाण दिया एक ही है प्रभु। उनको पूजा करने से सारा देवता का पूजा हो जाता है, भगवान को भोग लगाने मात्र से सारा देवता लोग को भोग लग जाता है, भगवान का आरती करने से सारा देवता लोग का भी आरती हो जाता है, अलग अलग करने का जरूरत नहीं है। और प्रभुपाद एग्जाम्पल देते थे पेड़ का, पेड़ का जड़ होता है एक ही है, लेकिन उसका डाहिया, इसका शाखा, इसका पत्ता कितना कितना है, लेकिन जड़ में पानी डालने मात्र से हर शाखा प्रशाखा में पहन जाता है। उसी प्रकार भगवान कृष्ण जो है वो जड़ है, भगवान विष्णु जो है वो जड़ है, और उनको पकड़ना है, उनको पूजा आराधना करने मात्र से सारा देवता लोग को संतुष्ट हो जाते हैं। फिर दूसरा एग्जाम्पल देते थे प्रभुपाद जी, गर्भ मतलब पेट, हम जब भी भोजन करते हैं पेट को ही भेजते हैं, और पेट से का अंदर चल जाने का बाद क्या होता है, हर इंद्रिय का पास पहुंच जाता है ऑटोमेटिक, ऐसा नहीं कि हमें अलग अलग इंद्रियों में देना पड़ता है। अभी भोजन करेंगे प्रसाद का टाइम पे, भोजन करते तो हमें मुख में डालते, ऑटोमेटिक पेट में जाकर पहुंच जाता है, और वहां से शक्ति क्रिएट होता है और हर इंद्रिय में पहुंचता है। ऐसा नहीं कि हमें अभी आंख में डालें कि कान में डालते हैं, ऐसा डालते हैं क्या, नाक में डालें, ऐसा नहीं, और यही होता है। इसलिए कहते हैं एक देव देव की पुत्र एव, प्रभु एक ही है, उनका शरण पे जाना है। देवता का शरण पे जाने से क्या, देवता लोग जितना सुख देंगे इतना दुख देते हैं, हमेशा के लिए सुख नहीं दे सकते, और देवता लोग कभी भी क्रोधित हो सकते हैं, और कभी कभी हो भी जाते हैं, और उनका भक्त भी परेशानी हो जाता है, उनका भक्त भी परेशानी है। जितने सब देवता का देखेंगे कितने कितने भक्त थे, सभी लोग को मालूम है शिव जी का भक्त रावण था, वो भी परेशानी हो गया। शिव जी का भक्त कितने मंत्र पाठ किया सुबह से शाम तक, जितने सब देवता के, हिरण्यकशिपु वो भी देवता का भक्त था, ये भी परेशानी हो गया। शास्त्र में बुरी बुरी प्रमाण है देवता का भक्त और भगवान कृष्ण का भक्त में कितने अंतर है। ऐसा कोई भी प्रश्न पूछ सकता है क्या हमें देवता को पूजा नहीं करना, नहीं करना है। क्या उनको प्रणाम नहीं करना, नहीं करना है। क्या उनका मंदिर नहीं जाना, जाना है, लेकिन एक उद्देश्य के लिए। शिवजी मंदिर जाते हैं, पानी चढ़ाते हो, बेल पत्ता चढ़ा रहे हो, तब उनको प्रार्थना करना चाहिए कृष्ण भक्ति के लिए, उनको आशीर्वाद मिल जाए, कृष्ण भक्ति याचना करना चाहिए। कोई देवी देवता का मंदिर पे जाते हैं तब उनको प्रणाम करना चाहिए, नहीं तो अपराध हो जाएगा। ऐसा नहीं कि हमारा भक्ति मार्ग पर सेकेंड नंबर अपराध है ना, सेकेंड नंबर अपराध क्या है, दस नंबर अपराध से सेकंड नंबर अपराध भगवान ब्रह्मा भगवान शिव आदि देवता मान देवता लोग को भगवान का समान ना समान और तुलना भी नहीं करना चाहिए। भगवान ना समान नहीं हो सकते, देवता लोग के स्तर पे, भगवान भगवान का स्तर पे। एक बार भगवान को परीक्षा करने के लिए भृगु जी को भेजा गया था, सभी को मालूम है ये चीज। भगवान को परीक्षा करने के लिए सारा मुनि ऋषि लोग परेशानी हो गए, बड़ा है कौन, ना शिव जी बड़ा है, ना ब्रह्मा जी बड़ा है, ना विष्णु जी बड़ा है। सरस्वती नदी का किनार पे बैठ के विमर्श चल रहा था सारा ऋषि मुनि ऋषि लोग का, बड़ा है कौन, भगवान है कौन। और एक व्यक्ति को चुने, किसको चुने, भृगु जी को चुने। और भृगु जी को चुन के बोले पता लगाइए कौन भगवान है। पहले उन्होंने गया, वहां से निकला सरस्वती नदी के किनार से, जो मीटिंग हो गया इष्टगोष्ठी हो गया, वहां से निकला भगवान को चुनने के लिए, भगवान है कौन। तो वो गया, पहले कहां पे गया, ब्रह्मा जी का पास। पहले ब्रह्म लोक गया, ब्रह्म लोक में देखा ब्रह्मा जी तपस्या में मग्न है। और ब्रह्मा जी को परीक्षा करने के लिए जा रहा है, तो क्योंकि ब्रह्मा जी का पुत्र है भृगु, बाप बेटा का संबंध है। और भृगु जी जाके ब्रह्मा जी को प्रणाम नहीं किया। अब ब्रह्मा जी क्रोधित हो गए, देखे बेटा को, बेटा सब कुछ भूल गया ना क्या, प्रणाम नहीं किया, क्रोधित हो गए। तब भृगु वहां से वापस गए, तब वहां से कहां गए, फिर शिवलोक। वहां जाकर देखे शिव जी ने क्या कर रहे हैं, तांडव नृत्य कर रहा है। वहां जाए देखे बोला ये क्या डांस चल रहा है। और क्योंकि शिव जी का भाई है ना, भृगु जी क्या है, उनका भाई है, क्योंकि ब्रह्मा जी का पुत्र दोनों है, शिव जी भी है और भृगु जी भी है। और भाई होने का नाते और ये शिव जी गले मिलने के लिए आए हैं, बोले आइए मोस्ट वेलकम। तब गले मिलने के लिए जब आए, तब भृगु जी कहते हैं और कोई जगह नहीं मिला गले मिलने के लिए, ऐसा भस्मी क्या लगाया, भस्म लगाया, गले पे सांप लगाया, हो सकता है गले मिलते मिलते सांप भी मेरा गले पे लग जाएगा। और नग्न अवस्था है और कोई घर द्वार भी नहीं है, हाँ श्मशान घाट में बात करने वाले हो, गले मिलने के लिए आए। ऐसा जब बोलने लगा भृगु जी ने, तब शिव जी क्रोधित होके क्या करने लगे, त्रिशूल लेके भागने लगे, पीछा करने लगे। और भृगु जी दौड़ते दौड़ते निकल गए वहां से, हाँ हो सकता है बाईपास हो गए, वहां से बाईपास हो गए। बाईपास हो गए कहाँ जाकर पहुंचे, विष्णु लोक में पहुंचे, जाके विष्णु लोक में पहुंचे। तो विष्णु जी क्या कर रहा है, नारायण जी क्या कर रहा है, लक्ष्मी जी का गोद में सिर को दे के सो रहे है। बोले ये क्या है, भृगु जी देखते हुए आश्चर्य होके जाके धमाक के एक नात लगाए, विष्णु का छाती को एक नात लगाए, पद प्रहार किया। पद प्रहार करते हुए और विष्णु का निधि टूट पड़ा, हो सकता है गोद में आनंद आ रहा था, सो रहे थे, निधि जब टूटा तो विष्णु जी हाथ जोड़ते हैं, भृगु जी को हाथ जोड़ते हैं, कहते हैं मेरा हृदय कितना कठोर है, हो सकता है आपका चरण को कष्ट लगा होगा। फिर पद प्रक्षालन करते हैं, पद धोत करते हैं, आसन देते हैं बैठने के लिए। तब भृगु जी समझ जाता है भगवान यही है। संसार में प्रत्येक व्यक्ति लगे पड़े हैं भगवान को परीक्षा करने के लिए, सभी लगे पड़े हैं। परीक्षा करने के लिए, भगवान को परीक्षा नहीं कर सकते, खुद पहले परीक्षा लो, अपना खुद का परीक्षा लीजिए, भगवान को क्या परीक्षा करेंगे, भगवान है कौन। स्वहस्त कमल में पद धोत किया, आसन दिया बैठने के लिए, गले भी मिले, कहे बोले जिस हृदय में मैं लक्ष्मी जी को धारण करती उसी स्थान पे आपका पद चिन्ह रहेगा। पद चिन्ह रहता है मतलब शास्त्र में प्रमाण दिया गया, जो भक्त होते हैं भगवान हृदय कमल में वास करते हैं। भक्त जैसा भगवान को हृदय कमल में धारण करता है, भगवान भी भक्त को हृदय कमल में धारण करते हैं। इसे निबिड़ संपर्क है भगवान और भक्त का, और जितने सब लीला भी भगवान करते हैं सारा लीला भक्त के लिए ही करते हैं, भक्त को प्रेम प्रदान करने के लिए, भक्त को आनंद देने के लिए ये सब लीला करते हैं। भगवान कितने दयामय होते हैं, इसीलिए देवता को पूजा नहीं करके भगवान को पूजा करने मात्र से सारा देवता लोक भी प्रसन्न हो जाता है। और जो सूर्य देवता है उनको, जो प्लखन दीपी आशी लोग, ये लोग सूर्य देव का उपासना थे, उपासना करते थे। लेकिन हमको यही शिक्षा मिलता है, क्योंकि शुभ और अशुभ का जो स्रोत है वो भगवान से, यहाँ पे विष्णु ही एकमात्र आराध्य है, और उन्हीं से ही वेद, उनसे ही धर्म, उनसे शुभाशुभ फल मिलता है। ये प्रमाण दे दिया प्रभुपाद ने, अनुवाद में पूरा एक्सप्लेन कर दिया, इसलिए हमें भगवान विष्णु का शरण पे जाना चाहिए। हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। गीता महात्म्य के श्लोक में इतना वर्णन नहीं किया, सिर्फ एक लाइन, जहाँ पे चारों लाइन का जो श्लोक है, चारों लाइन का एक्सप्लेन करेंगे तो एक घंटा लगता है, लेकिन इसमें ये टॉपिक का अनुसार एक लाइन जरूरत था, इसलिए एक लाइन एक्सप्लेन किया। एक देव देव की पुत्र है वो, इसमें एक लाइन जरूरत था, क्यों चारों लाइन अलग अलग जगह पे एक्सप्लेन किया जाता है। तब फिर शाम को भी उसका अब अभी चर्चा चल रहा है, आप लोग को जो भी FM में सुनते हैं बहुत अच्छा है, जो नहीं आ पाते हैं और जो आते हैं जरूर 5 बजे टाइम पर आए, 6:30 बजे का अंदर हमारा कथा खत्म करते हैं, और उसमें क्या होता है उसका बाद भी अच्छा स्वीट प्रसाद, नमकीन प्रसाद भी मिलता है। और दूसरा है, क्योंकि वो जो चीज़ में टॉपिक लिया हूँ मृत्यु की वाद यात्रा, ये बहुत सुनने का चीज़ है, क्यों इसे चीज़ सुनने के आप लोग को दूसरा को भी बता सकते हैं, जो कर्म कांडिया में कभी कभी आपका भाई भक्त नहीं मनता है, आपका पिताजी भक्त नहीं मनता है, आपका पत्नी भक्त नहीं मनती है, उनको बता सकते हैं, क्योंकि हम चाहते हैं सभी को कृष्ण भक्ति जुड़ा के भक्त बना के कहाँ लेकर जाने के लिए, गोलोक लेकर जाने के लिए। हम नहीं चाहते कोई नरक चला जाए, पारिवारिक जीवन में पारिवारिक लोग को बताने के लिए मैं ये टॉपिक लिया है। आप लोग वृंदावन में रह रहे हैं, उनको भी वृंदावन खींच कर लाना है, इसके लिए ये टॉपिक है। हरे कृष्णा। ग्रंथराज श्रीमद् भागवत महापुराण की जगत गुरु श्री प्रभुपाद की।